ओम शांति। बाबा हमारे पास आए, हमारा उनसे मिलन हुआ, लेकिन एक और बात हुई। बाबा आए हैं हमारे श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण करने। पहले से ही कुछ लोग कहते हैं भाग्य भगवान के हाथ में है, और कुछ कहते हैं भाग्य हमारे हाथ में है। आप क्या कहेंगे? अब दोनों के हाथ में है ना, अब दोनों के हाथ में है। हमारा तो साथ, बाबा की मदद, उसकी गाइडेंस, हमारा पुरस्कार, इससे हम श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण करते हैं। तो अपने भाग्य को ऐसा महान बनाना है सबको कि किसी भी जन्म में भाग्य की कमी न पड़े। सोचना है आज, चिंतन करना है बहुत अच्छी तरह कि हमें अपने भाग्य का सितारा चमकाना है। वो हमारे मस्तक पर चमकेगा। मैं आप सभी को एक बात याद दिलाऊं, भाई लोग ज्यादा जानते हैं, माताएं भी समझती हैं, अपने परिवार को जलाने के लिए आप सभी को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कर रहे हैं ना? बच्चे एक अच्छी नौकरी पाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, अनेक कोर्सेज करते हैं, कोचिंग में करेंगे, रात दिन मेहनत करते हैं। हमें बाबा ऐसा भाग्य देने आया है, सोचने की बात है। अब कैसा भाग्य है? कि दो युग तक तो कुछ भी कमाना नहीं पड़ेगा, और तीसरा युग शायद सब कुछ मिलेगा। सतयुग में आपका घर कितना बड़ा होगा बोलो? ऐसा तो नहीं 50 फुट की जगह मिल रही, इसमें बना लो बस, नाप तोल हो रही, 4 इंच इधर हो गया तो झगड़े हो रहे हैं। सब हमारा, और महल किसके? सोने के, हीरे जड़े हुए। एक एक के शरीर पर इतनी धन संपदा कि सारे फरीदाबाद का इतना माल नहीं होगा जो आपके एक एक के शरीर पर होगा। साड़ियों में भी हीरे मोती जड़े होंगे, पाउडर भी सोने का होगा, पता है? खाने को खाएंगे 36 छप्पन। तथा धन संपदा, कोई कमी नहीं, कोई अभाव नहीं, कोई पढ़ने की टेंशन नहीं, नौकरी पे जाना नहीं है, बच्चों को बीमारी की कोई टेंशन नहीं। सोचो कितना सुंदर भाग्य बाबा हमें दे रहे हैं। दे रहे हैं या नहीं? इतने बड़े भाग्य को प्राप्त करने के लिए, भाई इसका ले लो जरा फोन, बहुत तेज बज रहा है, वीडियो में आ जाएगा। इतना बड़ा भाग्य पाने के लिए, थोड़ा बाहर चल जाओ, बाहर चल जाओ, बाहर चल जाओ। इतना बड़ा भाग्य पाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं वैसे ही, फुर्सत नहीं मिलती, मुरली सुनने को टाइम नहीं है, योग तो होता नहीं हमसे। तो बाबा क्या कहेगा? तुम्हें फुर्सत नहीं है तो मुझे भी तुम्हें भाग्य देने की फुर्सत नहीं है, कहेगा या नहीं? और अगर हम कहेंगे हम तुम्हारे लिए, तो बाबा की आवाज भी आएगी, मैं तुम्हारे लिए। हम कहेंगे मेरा सब कुछ तुम्हारा, तो वो भी कहेगा मैं भी और मेरा सब कुछ तुम्हारा। बात कहने की नहीं केवल, बहुत सूक्ष्म बात है। तो आज हम चर्चा करेंगे भाग्य निर्माण कैसे होगा हमारा, किसको कितना भाग्य मिलेगा। बाबा हमें 9 खजाने दे रहे हैं, सुना होगा सबने, भारत में प्रसिद्ध है 9 निधि 8 सिद्धि। बाबा हमें 9 खजाने दे रहे हैं, उनमें पहला खजाना ज्ञान का खजाना। अब आप बोलेंगे दूसरा, फटाफट बोलो, इतनी देर नहीं लगानी, गुणों का खजाना। तीसरा शक्तियों का खजाना, भाई बोलो ठंडे नजर आ रहे भाई। चौथा संकल्पों का खजाना। पांचवा समय का खजाना। छठा माताएं बोलेंगी हो गया, खुशी का खजाना। सातवा बोलो फटाफट, दुआओं का खजाना। आठवा पवित्रता का खजाना। नौवा पुण्य कर्मों का खजाना। आप कभी इस पे सोचते नहीं होगे, इसलिए ख्याल नहीं आपको। ये 9 खजाने बाबा हमें दे रहे हैं, इनके आधार से हमारा जन्म जन्म का भाग्य बनेगा। किसने ये खजाने कितने प्राप्त किए हैं उससे उसका भाग्य निर्धारित होगा। पहला खजाना अब ध्यान से सुनेंगे, ज्ञान का खजाना। ज्ञान वृद्धि होती है मुरली सुनने से, ज्ञान सुनाने से, ज्ञान के चिंतन से, अध्ययन और चिंतन, इससे ज्ञान के खजाने में वृद्धि होती है। और ये ज्ञान का खजाना मनुष्य की बुद्धि का निर्माण करता है। अटेंशन दें, किसके पास कितनी बुद्धि है, संगम युग पर जिसने ज्ञान के द्वारा बुद्धि का श्रेष्ठ निर्माण किया है, यही बुद्धि जन्म जन्म हमारे साथ चलेगी। याद रखेंगे, अटेंशन से सुन ले भाई लोग, जिसके पास ज्ञान धन बहुत है उसे स्थूल धन कमाने में मेहनत नहीं लगती। भगवान वाच्य है ये, सुना, जिसके पास ज्ञान धन बहुत है उसे स्थूल धन कमाने में मेहनत नहीं लगती। जो जितना ज्ञान धन दान करते हैं सतयुग में उतने ही धनवान बनते हैं। करती माताएं ज्ञान धन या नहीं, या माल मिल गया क्यों दे किसी को, क्या विचार है, करते हैं भाई लोग, करते हैं या नहीं। ठंडे लग रहे हैं थोड़े, हाँ आवाज मेरे को इधर से दम आया, इधर तो ठंडे ठाकुर बैठे हैं। ठीक है, दूसरा खजाना समय का खजाना। समय सचमुच खजाना होता है या नहीं, जो अनमोल समय को गवा देते हैं वो पछताते हैं। विद्यार्थी को जो पढ़ने का समय है अगर वो उसे महत्व नहीं देता समय को, तो जीवन भर पछताता है, काश मैंने तब समय को महत्व दिया होता। ट्रेन पकड़नी है, समय का महत्व ना हो, 10 बजे ट्रेन है और हम सोचे चले जाएंगे, ट्रेन तो लेट ही होती रहती है, 10:15 पहुंचे तो एक एक सेकंड का महत्व उससे पूछो, दौड़ते हैं ना, सेकंड के 10वें हिस्से के कारण नंबर सेकंड थर्ड आ गया, गोल्ड मेडल मिलना मिस हो गया, है ना उनके पास समय का महत्व। समय का महत्व उस स्टूडेंट से पूछो जो एग्जाम दे रहा है, जिसके 2 क्वेश्चन रह गए लेकिन 2.5 घंटे पूरे हो गए। संगम युग का समय सर्वश्रेष्ठ, कोई इस समय के महत्व को न जानता हो, यूं ही टाइम वेस्ट करता हो बातों में, परचिंतन में, तेरे मेरे में, न तो उसको कोई बुद्धिमान कहेगा और वो ईश्वरीय खजानों से, श्रेष्ठ भाग्य से वंचित भी हो जाएगा। ध्यान से सुन लें, जो समय को नष्ट करता है, समय एक दिन उसको नष्ट कर देता है। जो समय को नष्ट करता है, सफलता उससे मीलों दूर चली जाती है। जो समय को महत्व देते हैं वो महान बन जाते हैं, सफलता मूर्त बन जाते हैं। बाबा ने कहा, तुम्हारा एक एक सेकंड वर्ष के समान है। याद किया करेंगे ब्राह्मण, 20 साल से ज्ञान में चले थे लेकिन कुछ पाया नहीं, हम तो इधर उधर ही लगे रहे, हम तो दूसरों को देखने में लगे रहे, हम तो मधुबन में एक दो बार ही गए, सोचा वहां जाके क्या करेंगे, पछताएंगे बहुत। अब बाबा का पाठ पूरा हो रहा है, लोगों ने पछताना शुरू कर दिया है, 30 साल में 3 ही बार गए हम तो, फंसे रहे ग्रस्त में, तेरे मेरे में। समय अनमोल निधि है, भाई पानी भी थोड़ा रखा देना। समय को महत्व देना, संगम युग आया भाग्यवान आत्माओं के पास, आया या नहीं, भगवान का मिलन हुआ। रोज सवेरे सुंदर समय हमारे पास आता है, अनेक वरदान लेकर आता है। समय को महत्व देना है, खजाना है, भाग्य निर्माण का समय है। सभी सोच लें, हम इस अनमोल समय को कैसे बिता रहे हैं। चिंतन करेंगे आज, मेरा संगम युग कैसे बीत रहा है, उलझनों में, व्यर्थ में, तेरे मेरे में, समस्याओं में, परेशानियों में, या ईश्वरीय आनंदों में, परम सुखों में, बाबा के मिलन में। सोच लें सभी। अनेक बुद्धिमान लोग समय को सफल नहीं कर रहे हैं, और जो समय को सफल नहीं करते, चारों युग सफलता के लिए उन्हें सफलता के पीछे पीछे भागना पड़ेगा, और जो समय को सफल कर रहे हैं, सफलता उनके पीछे पीछे चलेगी परछाई की तरह। सोच लें, हम अपने इस अनमोल समय को कैसे बिता रहे हैं। तीसरा खजाना, खुशी का खजाना, खुशी जीवन का सचमुच अनमोल खजाना है। लोग धन दौलत इकट्ठी करते हैं कि खुश रहेंगे, पर वो ये भूल जाते हैं कि खुशी सबसे बड़ी दौलत है। है या नहीं, धन बहुत हो लेकिन मरे मन परेशान रहता हो, लगेगा धन बेकार। मैंने ऐसे धनवान लोग देखे जिनके बच्चे मरने को जा रहे थे, सुसाइड, बच गए किसी तरह। धन का महत्व से ज्यादा महत्व है खुशी का। जहां खुशी है वहां रोग भी भाग जाते हैं, जहां खुशी है सफलता पीछे पीछे चलती है, जहां खुशी है वहां लक्ष्मी वास करती है, जहां खुशी है उन्हें देखकर भगवान भी खुश होता है, वाह मेरे बच्चे, उनका चेहरा देखकर लोगों के भी गम दूर हो जाते हैं। तो रहती हैं माताएं खुशी या खुशियां नहीं रहते हैं ना, थोड़ा थोड़ा या पूरा, कुछ माताएं नहीं रहती। भाई लोगों का क्या प्रोग्राम है, रहते हैं भगवान के बच्चे ही खुश नहीं रहेंगे तो क्या शैतान के बच्चे रहेंगे फिर। सोच लो, जिनको संपूर्ण ज्ञान मिल गया वो यदि खुश नहीं होंगे तो क्या अंधकार में भटकने वाले लोग खुश होंगे। सोच लें, हमें खुश रहना है, खुश रहना है पक्की तरह से, रहना है ना, शुरू कर दो। बहुत बड़ा खजाना है, बहुत बड़ा खजाना है संकल्पों का खजाना। इसको तो बीज बना लें। बाबा की मुरली में बहुत गहरा महावाक्य आया कभी, तब तो हमने उसका अर्थ समझा नहीं था, पर मैं नोट कर लिया था। संकल्प की एनर्जी ही भाग्य की एनर्जी है। जितने जिसके पास श्रेष्ठ संकल्प, उतना ही उसका भाग्य श्रेष्ठ होगा। जिसने जितनी संकल्प शक्ति जमा कर ली, एक है श्रेष्ठ संकल्प, दूसरा है संकल्पों की शक्ति जमा करना। संकल्प हमारे शक्तिशाली हो, संकल्प हमारे व्यर्थ ना हो, संकल्पों की स्पीड धीमी हो जाए, हमारा मन व्यर्थ से मुक्त में संकल्प रहने लगे, तो मन बन जाता है बहुत शक्तिशाली। जिसने संगम युग पर महान संकल्प अपने मन में भर लिए, संकल्पों से आत्मा को श्रृंगार लिया, उसे जन्म जन्म महान संकल्प रखने का भाग्य प्राप्त होगा। जिसके विचार महान, वही व्यक्ति महान। जिसके विचार छोटे, वो समस्याओं में उलझा हुआ। महान विचारों का निर्माण करें हम। कहां से मिलते हैं महान संकल्प? कहां से मिलते हैं? मुरलियों से। सभी को ध्यान देना है, सुंदर विचारों का भंडार बनाएं अपने को। संकल्प ही तो हमें खुशी देते हैं, संकल्प ही किसी को उदास करते हैं, संकल्प के कारण ही कोई परेशान रहता है, संकल्प ही किसी को महानता के शिखर पर ले जाते हैं, सफलता की चोटी पर पहुंचा देते हैं। सभी युवक ध्यान दें, संकल्प जितने सुंदर, पर्सनालिटी उतनी ही आकर्षक। और सुंदर संकल्प कहां से मिलेंगे? और एक बात याद रखें, स्वमान से। स्वमान की प्रैक्टिस करते रहें, संकल्प महान होते जाएंगे। निगेटिव संकल्प अब हमारे पास न रहें, निगेटिविटी को विदाई दे दें, उल्टा न सोचते रहें। बीमार भी हो जाते हैं तो क्या सोचते हैं? पता नहीं ठीक होंगे या नहीं, पता नहीं क्या होगा, बाबा भी मदद नहीं कर रहा। पहले ही सोच लेते हैं बाबा भी मदद नहीं कर रहा है। अरे ये सोचने में क्या जाता है, बाबा हमारे साथ है और वो हमें निरंतर मदद कर रहा है, हम उसकी छत्र छाया में हैं, हमारा कुछ नहीं होगा। अभी यहाँ आते आते एक का फोन आया मुझे, दिल्ली की बहन, कैंसर बहुत ज्यादा, डॉक्टर ने कह दिया है अब इसका इलाज नहीं हो सकता। तो जब डॉक्टर ऐसा कह दें तो मनुष्य जरा निराश हो जाता है ना। तो मुझे फोन किया, मधुबन फोन कर रही थी, वहां से यहां आया। मैंने उसको पहली बात यही पक्की कराई, संकल्प कर लो मुझे जीना है, मैं ठीक हो जाऊंगी, विश्वास कर लो। और अगर उसको ये संकल्प आ जाता है बहुत अच्छी तरह, नहीं मुझे जीना है, तो वो ठीक हो जाएंगे। संकल्प में इतनी शक्ति है। हमारा हर संकल्प हमारे श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण करेगा। हमारा हर संकल्प हमें समस्याओं से मुक्त करेगा। बाबा का ये महावाक्य याद रखें आप, ध्यान से सुन ले महावाक्य, समस्याएं और कुछ नहीं कमजोर मन की रचना है। जिनको बहुत सोचने की आदत है, जिनको फीलिंग बहुत आती है, जो बहुत निगेटिव रहते हैं, उन्हें लगता है जीवन समस्याओं से घिरा हुआ है, कैसी दुनिया आ गई, समस्याएं समस्याएं, जहां जाओ धोखा ही धोखा। निगेटिव सोचते हैं, बीमार भी हो गए, मेरा तो भाग्य ही टूटा हुआ है, अभी तो भगवान मिला था, अभी बीमारी आ गई। थोड़ी बाद में आ जाती तो क्या होता, इसको सोचते ही रहते हैं। जैसा हम सोचेंगे वैसा ही बन जाएंगे। मैं एक और बात कहता हूं आपको, जैसा हम सोचेंगे वैसा ही पाएंगे, पक्का कर दो। इसलिए संकल्पों का खजाना भरपूर करते चलो, सुंदर संकल्प हमारे सुंदर भविष्य का निर्माण करेंगे। और आगे चलें, और कौन सा खजाना? दुआओं का। बाबा ने कह दिया तुम्हारे जब चित्र भी दुआएं देते आए हैं मंदिरों में, तुमने दी हैं, इसलिए सबको शुभ भावनाएं दे दो, सबका कल्याण हो, सब आगे बढ़ें, सब निश्चिंत हो, सबका प्रभु मिलन हो। लेकिन दुआओं के साथ कभी कभी बददुआएं भी देते रहते हैं। कैसे? ये पड़ोसी, इसने बहुत तंग किया, जल्दी मरे। ये मुझे जीवन भर तंग करती आई है, पता नहीं इससे कब कुछ पीछा छूटेगा, बीमार हो जाए, सोचते रहते हैं। ये नहीं, सबका कल्याण हो जाए, सब बाबा के बच्चे हैं, सुखी हो जाएं। इन संकल्पों से क्या फायदा होगा हमें, बोलो? माताओं को पहले पूछता हूं, क्या फायदा होगा? हम संकल्प कर रहे हैं सबके लिए, हमारे पड़ोसी, हमारे ये सब लोग सुखी हो जाएं, तो हमें क्या फायदा होगा? सुख हमारे अंदर भरता जाएगा, ये याद रखना है। और अगर बददुआएं देंगे तो वो भी वापिस हमारे पास आती रहेंगी, ठीक है? दुआएं देते चलो। और हम सब महान आत्माएं हैं, इष्ट देव देवियां हैं, हमसे संसार क्या चाहता है? दुआएं। यदि इष्ट देवियां ही दुआएं देना छोड़ दें तो भक्त कहां जाएंगे? सोच लो, बहुत बड़ा खजाना है, बहुत बड़ा सुख है, पुण्य कर्मों का खजाना, पुण्य कर्मों का। पुण्य की पूंजी बहुत बड़ी पूंजी है, कर्म मनुष्य के भाग्य का निर्माण करते हैं। बाबा ने कह दिया तुम्हारे हाथ में मैंने कलम दे दी है, कौन सी? भाग्य बनाने की, रेखा खींचने की, लिखने की। लिख लो अपना भाग्य जितना लिखना चाहो, और लिखेंगे कर्मों के द्वारा। कलम है श्रेष्ठ कर्म, इसलिए संगम युग पर बाबा के पास आ गए, पाप को विदाई दे दें। दिया नहीं है कईयों ने अब तक, देनी है विदाई। पाप को विदाई देते ही मन खुशियों से भरपूर रहेगा। पुण्य से आपने थोड़ा भी कमाया, सुख चैन की रोटी खाई, न बीमार होंगे, आनंदित रहेंगे। पाप से करोड़ों कमाया, सब हॉस्पिटल में जाएगा, बच्चे चरित्रहीन बन जाएंगे, शराबी हो जाएंगे, तंग करने लगेंगे आपको, तब आप परेशान होंगे, इनके लिए ही तो करोड़ कमाए थे, इन्होंने तो हमें घर से निकाल दिया। निकाल रहे हैं आजकल बच्चे माँ बाप को घर से, जिम्मेदार बच्चे नहीं, जिम्मेदार माँ बाप हैं, उनके कर्म हैं। पाप तो अति में पहुंच चुका है ना, पहुंचाया नहीं, अति में, अति बिल्कुल विस्फोट होने वाला है, पाप का विस्फोट, विकारों का विस्फोट होने जा रहा है संसार में। अगर एकम मन से दुनिया नष्ट न भी हो तो पाप और विकार इसको जलाकर भस्म कर देंगे, समय आ गया है। मैं तो ऐसी ऐसी कहानी सुनता हूं, सोच भी नहीं सकते हम तो ऐसा। बाप खुद बैठकर अपने लड़के और छोटी सी लड़की को 12 साल की को शराब पिला रहा है, मैं भी पीता हूं तुम भी पियो, इसमें ही आनंद है। कैसा होगा उनका जीवन? माता बेचारी परेशान हो रही है, ये क्या कर रहा है, ये पाप की अति पहुंच गई है। इसलिए हमें पुण्यों की ऐसी लहर फैलानी है कि संसार से पाप की लहर नष्ट होने लगे। कम से कम देवकुल की आत्माएं तो पुण्य कर्मों की ओर अग्रसर हों, ये हमारी जिम्मेदारी है। पुण्य कर्म, पवित्रता बहुत बड़ा खजाना है या नहीं? काम वासना ने, मनोविकारों ने, क्रोध ने, अहंकार ने मनुष्य को नष्ट कर डाला है। उसकी दिव्यता, उसका चरित्र, उसका प्रेम सब समाप्त हो गया है। तो जहां पवित्रता है वहां सुख शांति है, दोनों पीछे पीछे आ जाते हैं। हम ऐसे पवित्र वाइब्रेशंस फैलाएं, ध्यान दो, आप अपने घर में भी ऐसे पवित्र वाइब्रेशंस फैलाओ, सबके मन निष्पाप हो जाएं। हमारे पवित्र वाइब्रेशंस दूसरों को निष्पाप करेंगे। एक घर में अगर एक पवित्र आत्मा रहती है तो वो घर निष्पाप हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो सभी अपनी पवित्रता को ठीक करें। और संपूर्ण पवित्रता किसे कहते हैं? ध्यान से सुन ले आप ये बाबा की डेफिनेशन। व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो व्यर्थ में रहते हैं, क्या नुकसान? बोलो भाई लोग, बोलो। पवित्र रहने के बाद जो व्यर्थ में रहते हैं उनकी पवित्रता का तेज और बल नष्ट हो जाता है, उनका जीवन साधारण बनकर रह जाता है। जैसे कोई साधारण व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करे, न जीवन में तेज है, न मन में बल है, न चेहरे पे दिव्यता है, ऐसा जीवन हो जाता है। इसलिए संपूर्ण पवित्र, व्यर्थ से मुक्त, ईर्ष्या द्वेष से मुक्त, तेरे मेरे से मुक्त, ये पवित्रता संसार के लिए वरदान है। और जिसकी पवित्रता में संघर्ष है, जो गिरते पड़ते रहते हैं, उन्हें पवित्रता का सुख भी नहीं मिलता, उनका योग भी स्थिर नहीं होता। इसलिए इसको बहुत बड़ा खजाना जानकर इसको बढ़ाते चलें। गुणों का खजाना और शक्तियों का खजाना, जन्म उस गुणवान है। यहां संगम पर जिसने स्वयं को गुणवान बना लिया, वो हर जन्म में द्वापर युग के बाद भी गुण संपन्न रहेंगे। संगम युग पर जिसने अपने को संतुष्ट कर लिया, द्वापर कलयुग में भी संतुष्ट रहेंगे। संगम युग पर जिसने अपने को सुखी कर लिया, चारों युग सुखी रहेंगे। और जिसने भगवान को पाकर भी दुख का अनुभव किया, कलयुग में आके फिर वो बहुत दुखों में रहेंगे। जिन्होंने भगवान को पाकर भी स्वयं को संतुष्ट नहीं किया, द्वापर युग के बाद उन्हें संतुष्टता के लिए भटकना पड़ेगा। सुख शांति संतोष खुशी निरहंकारिता सहनशीलता, ये सब हमारे खजाने हैं। मैंने सुना एक की कहानी, एक बहुत बड़ा व्यक्ति कंपनियों का चेयरमैन रहा, लेकिन उसको जहां तहां नौकरी इसलिए छोड़नी पड़ी कि उसे बहुत क्रोध आता था। चारों ओर हाहाकार मच जाता था चेयरमैन। तो आखिर मालिक ने कहा, भाई हाथ जोड़ते हैं, पैसा ले जाओ, विदाई दो। पांच जगह से उसको रिजाइन करना पड़ा। आखिर बॉम्बे में था, ईमानदार बहुत, क्योंकि जो बहुत ईमानदार होते हैं उन्हें गुस्सा बहुत आता है, होता है नहीं कि तुम क्यों गड़बड़ कर रहे हो, मैं ईमानदार हूं, तुम्हें भी ईमानदार होना चाहिए। मैं ईमानदार हूं तो कलयुग में सब ईमानदार कहां से आए? ऐसा हाल हो गया कि बेचारे की पत्नी को नौकरी करनी पड़ी टीचर की, थोड़े से पैसे कमा के बच्चों की पालना करनी पड़ी। तब उसका एक फ्रेंड अपने यहाँ आने वाला बाबा का बच्चा डॉक्टर, उसने किसी कंपनी वाले से बात की, कहा बहुत योग्य व्यक्ति है इसे रखो। उसने उसकी योग्यता देखी, उसने भी उसको चेयरमैन बनाया। और तब इसको समझाया कि क्रोध नहीं, चित्त को शांत करो, व्यवहार को सुंदर बनाओ, नहीं तो भूखे रह जाओगे। रहा वो भूखा, तीन चार साल उसे भूखा रहना पड़ा, कुछ भी नहीं था, क्योंकि ईमानदार बहुत था, ऐसे वैसे पैसे कमाए नहीं थे। तो गुण मनुष्य का बहुत बड़ा खजाना है। अब देखो उसकी लाखों की संपत्ति से ज्यादा हो गए उसके गुण इंपॉर्टेंट। चेयरमैन को कितनी सैलरी देते हैं बड़ी कंपनी वाले, दो दो ढाई ढाई लाख, पांच पांच लाख हर मास, लेकिन वो उसके काम नहीं आया। उसको अगर सफलता के मार्ग पर ले चले तो उसके गुण, धन नहीं, क्रोध ने उसको नष्ट कर दिया। इसलिए गुण बहुत बड़ा खजाना है। याद रखेंगे बाबा का महावाक्य है, जो संगम युग पर बाबा के प्यार में मगन रहते हैं उन्हें चारों युगों में संबंधों में प्यार प्राप्त होता है। और जो दूसरों को प्यार नहीं देते तो द्वापर युग के बाद प्यार की तलाश में रहेंगे। प्यार देना सीखें सबको। गुण श्रृंगार है हमारे जीवन का, तो कुछ गुण चुन लें, दूसरों को बदलने की न सोचें, अपने को गुणवान बनाने की सोचें, तो बहुत सुखी रहेंगे। शक्तियों का खजाना है, जिसने जितनी शक्तियां जमा कर ली हैं, पहली बात शक्ति को दूसरा नाम भी देते हैं सत्ता, उसको जन्म जन्म सत्ता प्राप्त होगी। जन्म जन्म ताज उसके सिर पर आएगा जिसने शक्तियों का ताज पहन लिया है। यहाँ जो शक्तिशाली बन गए वो समस्याओं को हंसते हंसते पार करेंगे, जो शक्तिशाली बन गए उन्हें फीलिंग नहीं होगी, जो शक्तिशाली बन गए वो माया से डरेंगे नहीं, वो संसार में निर्भय होकर जिएंगे। उन्हें स्वयं को शक्तिशाली बनाना है, ये बहुत बहुत बड़ा खजाना है। शक्ति हथियारों के रूप में दिखाई ना, जिसके पास जितने हथियार वो सैनिक उतना ही शक्तिशाली, जिसके पास जितनी शक्तियां वो उतने ही सफल, चारों युग आनंद में बिताएंगे, भाग्य श्रेष्ठ बन जाएगा। तो बाबा की सेवा करके, यज्ञ सेवा करके और इन खजानों को जमा करके सभी अपने अपने महान भाग्य का निर्माण करेंगे। बोलो क्या विचार है भाइयों का? बाबा सब कुछ देने आया है, लेंगे या नहीं? माताएं ठंडा ठंडा, इतनी ठंडी तो नहीं है अभी, लेंगे। बाबा ने कह दिया, मैं तुम्हें अपना सब कुछ देकर खाली होकर वतन में जाकर विश्राम करूंगा। देने आया है वो तो सब कुछ, वो क्या करेगा उन चीजों को, उसके काम के नहीं है कुछ भी, हमारे लिए है। वो सब कुछ देने आया है, हमें अपनी झोली खाली करनी है पहले। किससे? समझ गए ना इसको? तो बुद्धि की झोली को खाली करना है, तब खजानों से ये झोली भर जाएगी, तब श्रेष्ठ भाग्य हमारे द्वार पर आ जाएगा, हम भाग्य के धनी माने जाएंगे और ऐसे भाग्यवान बन जाएंगे कि दूसरों को भी भाग्य बांटने लगेंगे। ऐसे भाग्यवान कि हमारे साथ भी ये टाइटल जुड़ जाएगा, तुम मास्टर भाग्य विधाता हो, जैसे शिव बाबा ब्रह्मा भाग्य विधाता हैं, हम भी मास्टर भाग्य विधाता बन जाएंगे। आप सभी अपने भाग्य को चमकाओ, और भाग्य की चमक चेहरों पर दिखनी चाहिए, खुशी के रूप में सारा हो जाएगा। जो जितना खुश हैं उनका भाग्य उतना ही चमक रहा है, क्योंकि अगर जरा भी पाप होता है खुशी नष्ट हो जाएगी, जरा भी पाप होगा योग लगेगा नहीं, जरा भी व्यर्थ संकल्प होंगे खुशी गुम। इसलिए जो खुश नसीब है वही भाग्यवान है। तो सभी बाबा से सब कुछ लेने का संकल्प करें और अपने पुरुषार्थ की रफ्तार को तेज करें। समय अंतिम परछाइयां फेंक रहा है, बहुत पछताएंगे वो लोग जिन्होंने भगवान को पाकर सब कुछ नहीं पाया। चिंतन करेंगे जहां उलझे हुए हैं, आप सोच सकते हैं भाई, सोच सकते हैं वहां तो उलझन है, परिवारों में निकल ही नहीं पाते, ठाएंगे नहीं, मन ही नहीं लगता है, ये सब है, लेकिन इसका समाधान है, बाबा के पास इसका समाधान है। समस्याओं में उलझे रहे या अच्छे योगी बनकर समस्याओं से मुक्त जीवन जिए, ये सोच लेना है। थोड़ा सा एक बार अपने को डिटैच करके उन समस्याओं से, उन उलझनों से, उन परेशानियों से जरा तपस्या कर दो और देखो जीवन समस्याओं से मुक्त, खुशहाली से भरपूर, आनंद से भरपूर, प्रेम से भरपूर हो जाएगा। लास्ट बात कहूंगा सबको, सभी अपने अपने परिवारों में दूसरे को बदलने की बजाय अपने को बदलने का संकल्प करें। कोई व्यक्ति आपको तंग भी कर रहा है, मन सोचेगा ना कि बहुत तंग करता है, क्या करूं, उदासी आएगी, लेकिन संकल्प कर लो ये तंग कर रहा है, मुझे तंग नहीं होना है, ये बार बार बुरा बोल रहा है, मुझे इसके शब्दों को अंदर जाने नहीं देना है, मुझे तो खुश रहना है, तो बुरा बोलने वाला भी तंग हो जाएगा ना। चाणक्य ने बहुत अच्छा कहा था, तुम अगर किसी से बदला लेना चाहते हो तो खुश रहो, वो जब देखेगा ये तो बहुत खुश है, खुद ही परेशान होने लगेगा। भयल तरीका बदला लेने का, खुश रहो, खुश रहना बड़ा भारी भाग्य है, वरदान है। तो सभी अपने को बदलेंगे और बाबा से सब कुछ प्राप्त करेंगे। मैं तो सोचा था किसी छोटे सेंटर में जा रहे, यहाँ तो आप बहुत महान आत्माएं बैठी हैं।